सूरत यूसुफ बड़ी खूबसूरत सूरत है। मैं अक्सर कहती हूँ कि लोग कहते हैं घरेलू फिल्में, घरेलू ड्रामे नसीहत आमोज चीज़ें, तो कुरान तो बुरा ही नसीहत है। पर सूरत यूसुफ ख़ानदानी ज़िंदगी, रिश्तों का वो ऊंच नीच और मोहब्बतों के जावियों को सीधा करने वाली सूरत है। इस सूरत से आपको पता चलता है कि किसी की मोहब्बत लेने के लिए उसको नफरत नहीं देते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे ये सूरत है। पूरे कुराने पाक में ये वो सूरत है जिसमें पूरी सूरत में एक स्टोरी चलती है। इसको अहसनुल कसस किया, क्योंकि आज पारे का आखिर है, हम इसको थॉरोली पढ़ते हैं। कल के पारे में इस सूरत पे काफ़ी कुछ होगा, तो इंशाल्लाह यूसुफ का जो किरदार और जो इसमें आपके मेरे अमल की बातें, इंशाल्लाह उसको 13वें पारे के साथ लेंगे। अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, और वैसे भी कहानी को कहानी की तरह सुनने का मजा आता है, तो पर मैं इसके तर्जमे को कहानी के तौर पे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये उस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती हैं, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली बयान करती हैं। अभी तक 12 पारों में आपको इस चीज का एहसास हुआ? कितने खूबसूरत तरीके से एक आयत में इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला बयान कर देते हैं। यही खूबी दर बयान हुई। हमने इसे नाजिल किया कुरान बनाकर अरबी जुबान में, ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ लो। ए नबी, हम इस कुरान को तुम्हारी तरह वही करके बेहतरीन पैरे के सूरत में वाकयात और हकायक तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो तुम इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर थे। क्या पता चला कि कुरान जब कहानियां सुनाता है तो उसका मकसद उसमें से हिदायत और नसीहत लेना होता है। यहां से अब किस्सा यूसुफ शुरू होता है। इस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आजार हो जाएंगे, यानी तुझे तकलीफ देंगे। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा। इसको हाईलाइट करें, तेरा रब तुझे सिलेक्ट करेगा अपने काम के लिए और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा, और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत इस तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम, इसाक और इसाक पर कर चुका। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। यहां से आप देखिए कि बाप बेटे का ताल्लुक, आज थोड़ी सी बात बापों पे भी होगी क्योंकि बहुत दिन से आप माओ का नाम सुन रहे हैं, क्योंकि सूरत यूसुफ में एक बाप का किरदार है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपके मेरे लिए एक रोल मॉडल है इस बारे में, और ऑफ कोर्स हम तो खवातीन हैं, लेकिन जिस मर्द तक भी हम ये बात पहुंचा सकेंगे इंशाल्लाह फायदा है कि बापों को भी जरा सा बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में कमाने का ऐसा शौक हुआ कि बस बापों ने अपना फर्ज समझ लिया पैसे कमाने की मशीन। अब्बू जी कौन है, वहां से पैसे निकलते हैं, ATM है। अब्बू जी अपनी कमी भी पूरी कर देते हैं एक चॉकलेट दिलाकर। नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं। बाप और बच्चों में भी तकल्फी हो। देखिए, एक बेटा अपना ख्वाब सुना रहा है तो बच्चों को बाप से इतना फ्रैंक जरूर होना चाहिए कि रात के ख्वाब भी सुनाएं और जागते ख्वाब भी सुनाएं कि अपने फ्यूचर के क्या प्लान है। अक्सर देखा गया कि बच्चे माओं से ज्यादा क्लोज होते हैं, नहीं, बच्चों के करीब भी होना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि बाप नबी थे, उनको ख्वाब से अंदाजा हो गया कि मेरे इस बच्चे को अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ा मुकाम देने वाला है, तो क्या कहा कि इस बात का तस्करा ना करना। इससे क्या पता चलता है कि बच्चों को मैनेज करना चाहिए, लेकिन ये क्यों ना करना, क्योंकि जब किसी नेमत को बहुत हवा लगती है ना, तो बस आप सोचिए कि वो खत्म हो जाती है। आज का कोई बाप होता कहता फेसबुक पे डाल दो अपना ख्वाब, सबको पता चल जाए मेरे बेटे को कैसा ख्वाब आया है। ज्यादा ना इजहार करें। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, अगर आपने कभी खाना पकाया है तो, अक्सर तो आपके हस्बैंड ही पकाते होंगे, आप देखें कितनी जल्दी बोल रहे हैं। इसको कहते हैं विमेन राइट्स, हकूक ए निस्वा। हमारे बड़े कहते थे कि पकते चावलों का ढक्कन बार बार ना खोलो, हवा लग जाती है। गोश्त डाल दिया, बार बार ढक्कन खोलेंगे गोश्त नहीं गलेगा। बिल्कुल यही अल्लाह की सुन्नत है। अगर अल्लाह आपको कोई नेमत दे रहा है ना, ईमान की, कोई ख्वाब आ रहा है, आप देखिए ना, ऐसा ख्वाब को हमने देखा होता, आज कितना मशहूर है ख्वाबों में, नबी को देखा और वो गए, मैं जन्नत में हूँ, चुप करके बैठो आराम से। नहीं, कभी भी ऐसी चीजों को हाईलाइट ना करें जिससे सेल्फ प्रोजेक्शन हो। अरे, कई लोग अक्सर कभी कोई अपने ख्वाब लिखते रहते हैं, तो मैं ख्वाबों को ज्यादा अहमियत नहीं देती। फलां को देखा, आपको देखा, अच्छा भी देख ले फिर, के हकीकत में भी देख लेंगे। तो याद रखिए कि ख्वाबों की एक हकीकत है, लेकिन हर ख्वाब ऐसा नहीं होता कि उसके पीछे लग जाए। बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हकीकत में जागने वाला बनाए। एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जिनको ख्वाब अच्छे लगते हैं उनको रात छोटी लगती है, और जिनको ख्वाबों की ताबीर अच्छी लगती है उनको दिन छोटा लगता है। तो बात याद रखिए, काम ज्यादा करें, ख्वाब कम देखें। अब आगे चलते हैं। हकीकत यह कि यूसुफ और इनके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानी है। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। भी ज्यादा हैं तो क्या हुआ? ये भी पास लोगों को एक गलत फहमी होती है, हम बहुत ज्यादा हैं इसलिए बहुत कामयाब हैं। सच्ची बात यह कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक चुके हैं। चलो चलो यूसुफ को कत्ल कर दो और इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हें तुम्हारे वालिद की तवज्जो मिल जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफला इसे निकाल ले जाए। या आप देखिए रिश्तों के मामले में कमी बेशियां। हजरत यूसुफ के भाइयों को गलतफहमी लगी, उनको लगा कि यूसुफ के साथ बाप को मोहब्बत चूंकि ज्यादा है, तो यूसुफ को रास्ते से हटा दो तो बाप हमसे बहुत प्यार करेगा। आज बहुत सारी बच्चियों को ये गलती लगती है, शादी के बाद ससुराल जाएंगी, उनका क्या ख्याल होता है शौहर की मोहब्बत तब मिलेगी जब ये अपनी माँ से कट जाए, बहनों को मिलना छोड़ दे और भाइयों से हाथ उठा ले। याद रखिए, नफरतें देके कभी मोहब्बत नहीं मिलती। कोई मर्द अपने मिजाज के मुताबिक अपने घर वालों की बुराई पसंद नहीं करता, वो बच्चियां उन शौहरों की नजरों से गिर जाती हैं जो उनके घर वालों की बुराई करती हैं। हमेशा याद रखिए, मोहब्बत देंगे मोहब्बत मिलेगी, इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। बहुत सारे लोग सूरत यूसुफ को कहते हैं कि दुल्हन के चेहरे पे पढ़ के फूको तो क्या होता है, सुना है कुछ? सूरत यूसुफ के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा और इतने अजीबोगरीब वजीफे आज के दौर में लोग बना बना के भेज रहे हैं कि मुझे खौफ आने लगता है कि क्या क्या दीन का मजाक हो रहा है। तो सूरज यूसुफ के बारे में, प्रेग्नेंट औरत पड़ेगी बच्चा बड़ा खूबसूरत होगा, दुल्हन के चेहरे पे फूकने खूबसूरत होगी नहीं, इस सूरत से अखलाक सिखाइए। ये वाकई खूबसूरत सूरत है दुल्हनों के लिए, अगर वो मुहसिना बन जाए, अगर वो मुत्तकिया बन जाए। हमने इसको बहुत दफा किया है, मैंने इसको पाकिस्तान में एक दफा 4 दिन में बच्चों की तरतीबियत के एंगल से कराया था, फिर इसी तरह एक दफा हमने इसको ससुराली ताल्लुकात के बेहतरी से पढ़ा था। हर साल ही जब भी मौका मिलता है इसको पढ़ते हैं, किसी एक सूरह यूसुफ की तफसीर सुनना शुरू करते हैं। आप देखेंगे, अल्लाह ना करे कि सुबह भी लड़ाई घर में अगर हुई थी ना, तो आपको इस सूरत पे से उसमें अपनी गलती जरूर नजर आएगी। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। खैर, भाइयों ने यूसुफ के कत्ल का इरादा किया। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान क्या बात है, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा ही नहीं करते। इसको कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस, पहले ही पता है कि नहीं करना क्योंकि काम ही गलत करने जा रहे हैं, हालांकि हम इसके सच्चे खैर हुए हैं। इरादे हैं कत्ल के, दिल में है हसद और जुबान से क्या कहते हैं। आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ रिश्तेदारों की जुबान पे ऐसे ही जुमले होते हैं, दिल में बुगस और जुबान पे मुबारक हो आपको। ये जुमले दिल की खोटेपन की अलामत है। कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा, हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। क्या पता चला, जरा घूमेंगे फिरेंगे पिकनिक करेंगे मजा आएगा। सोचिए जरा, इससे क्या पता चलता है कि बंदे को घूमना फिरना चाहिए, किस तरह, कहाँ, जहां ऐसे इरादे ना हो बल्कि अच्छे इरादे हो। इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने वो पॉइंट यूज किया जिस पे उनको उम्मीद थी कि बाप इजाजत दे देगा। बाप ने कहा, तुम्हारा इसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझे अंदेशा है कि कहीं इसे भेड़िया ना भाड़ खाए। ये हजरत याकूब को नहीं कहना चाहिए था क्योंकि बाद में उन्होंने यही बात पकड़ ली। मसलन आपका छोटा सा घुपलू बच्चा स्कूल से आया, आपने देखा उसका रंग लाल है, आप कहते हैं बुखार है, बस देखिए फिर वो आपको लाडजो दिखाएगा। कभी वो जुमला ना बोले जो बाद में लोग पकड़ के वही आपके सामने रख दे। खैर, जबकि तुम इससे गाफिल हो, उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते हुए इसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं तब तुम बड़े ही निकम्मे होंगे। इस तरह इसरार करके जब वो इसे साथ ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को इनकी यह हरकत जितलाएगा और ये अपने फेल के नतायज से बेखबर है। यहां भी जरा तकदीर के थपेड़े देखिए, इतना कीमती यूसुफ नबी की नस्ल में से, लाडला प्यारा, बाप की आंखों का तारा, और सबसे बढ़कर इतना प्यारा ख्वाब देखा हुआ यूसुफ, और इतना प्यारा जिसकी ताबीर बाप ने बता दी कि अल्लाह तुझे अपने लिए चुनेगा। आज देखिए हालात के थपेड़ों में खाते हुए एक कुएं में गिराया जाएगा। कई बच्चियां बड़ी प्यारी होती हैं माँ बाप को, आंखों का तारा, ससुराल में जाकर ठोकरों में आ जाती हैं। जिंदगी में ये होगा, जब कोई आपकी नाकदरी करे फौरन उस कदरदान की तरफ जाइए, क्योंकि कान अल्लाह शाकिरन अलीमा। और मैं हमेशा ये मैसेज देना पसंद करती हूँ, जो किसी जगह लोगों का ठुकराया हुआ है, शौहर छोड़ गया, ससुराल ने कदर ना की, बच्चे छोड़ गए, आइए इस किताब को थामिए, अल्लाह आपको इतना मजबूत किरदार देगा, आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। दुखों और तकलीफों के वक्त में रोने धोने और शिकवे करने की बजाय इस किताब से जुड़ दें, आप देखेंगे कि इतना ज्यादा दिल को सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा कि यही किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है। और यूसुफ को वहां वही पहुंच रही है, क्यों? यूसुफ रजी तो बिल्लाह रब्बन थे, तकदीर के फैसलों पर राजी रहिए, आप कुओं में भी गिरा दिए गए, दिल मुतमईन होगा, क्यों? अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो यहां लिखिए, हर किस्म के हालात में पुरसकून रहना ये मोमिन होने की अलामत है। अल्लाह ताला हमें ये अता फरमाए। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था, कितने में भेड़िया आकर इसे खा गया। वही लफ्ज बोले जो बाप ने बोले थे, ताकि कहेंगे अब्बा आपने तो पहले ही कह दिया था, वही हुआ जिसका डर था। आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे चाहे हम सच्चे ही हों। क्या ये सच्चे थे? तो कई दफा लोग इसी तरह की डिप्लोमेसीज कर रहे होते हैं, दिल में कुछ होता है जुबान पे कुछ और लाते हैं। वो यूसुफ के कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए। ये सुनकर इनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया है। भाई का कत्ल, इतनी बड़ी बात और तुम्हें इतना छोटा लगा? अच्छा, सबर करूंगा और बखूबी सबर करूंगा, जो बात तुम बना रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है, या फिर बाप और माँ का किरदार। इतनी बड़ी गलती करके आ रहे हैं बच्चे, आप अपने ऊपर लीजिए, आपकी बेटी है और बड़े भाई ले गए उसको बाहर घुमाने, और जरा सी लापरवाही की वजह से उस बच्ची को या बच्चे को चोट ही लग गई, आप और मैं क्या करेंगे? याकूब इतना साबिर बाप है, कहते हैं मैं सब्र करूंगा, क्योंकि ईमान वाले के दिल में एक ठहराव होता है। या फिर तकदीर को समझिए, ईमान वाले को हर तकलीफ के पीछे खैर दिख रही होती है, मेरा रब मेरे से बुरा नहीं कर सकता, माँ ने ये किया फिर ठीक ही किया होगा, अम्मी ने ये कहा ठीक ही होगा, बस इसी को ले, अल्लाह ने ये किया मेरे साथ ठीक होगा, अल्लाह का हुक्म है फिर ठीक होगा, अल्लाह ने ये कहा ठीक है, ये चीज तकलीफों में मुतमईन करती है। तो लिखिए, ईमान बिल कदर बंदे को सुकून देता है। आप और मैं अपने इस ईमान के लेवल को किसी थर्मामीटर किसी बैरोमीटर पे नहीं चेक कर सकते, इस पे जरूर कीजिएगा। अपने लिए एक जुमला लिखिए मुहासबे का, जब मेरे ऊपर कोई मुश्किल आती है तो मेरा रद्द अमल क्या होता है? शोर, भागना, सीना को भी हाय मैं मर गई, हाय मैं टूट गई, बर्बाद नहीं। फिर अगला जुमला लिखिए, जब कोई काम मेरी मर्जी के खिलाफ होता तो मेरा रद्द अमल क्या होता है? बस आपको अपने ईमान का भी पता लग जाएगा और मुझे भी। अल्लाह हमें सुकून दे। इधर एक काफला आया और इसने अपने सक्के को पानी लाने के लिए भेजा। सक्के ने जब कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, ये तो एक लड़का है। उस दौर में लोग कुओं में से पानी लेते थे और पानी लेने आ गए और लड़का मिल गया। कुएं में जब निकला होगा डोल तो उसमें छोटा सा यूसुफ बैठा हुआ खूबसूरत सा बच्चा होगा, क्या लगा होगा उस वक्त सक्के वालों को, है? हाजा गुलाम। और देखिए जरा उसकी लफ्ज सुनिए कितने खूबसूरत हैं। क्या कहा? काला या बुशरा हाजा गुलाम। अब ये देखिए, या बुशरा हाजा गुलाम, एक फितरी सा रद्दे अमल है ना, पानी की उम्मीद थी, एक खूबसूरत बच्चा निकला है, और उस दौर में बच्चे बिकते थे, उन्होंने कहा वाह ये तो एक कमोडिटी आ गई, करेंसी आई। किसी ने मुझे एक वाक्या सुनाया, प्लीज गौर से सुनिएगा, ये मैं नहीं सुना रही क्योंकि बाद में आपने व्हाट्सएप पे इसके जेम्स बना के भेजने और लोग मुझसे पूछेंगे वो कौन सी दुआ थी जो आपने उस वाक्य में कही थी। किसी ने कहा, बेटियां किसी की कहा, अच्छा अब बेटा चाहिए उसका एक तरीका है, अब जो बेटी पैदा होगी ना उसका नाम बुशरा रख देना, क्योंकि या बुशरा हाजा गुलाम, इसके बाद बेटा पैदा होगा। हमने इस कुरान से ये लिया, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, हम इस कुरान से यही लेंगे। आप देखिए कि इस किताब को पढ़ने की बजाय हमने इसमें से दुनिया का हर फायदा लेना चाहा, तो याद रखिए ये मन माने टोटके और वजीफे ये कुरान को सूट नहीं करते और आपको मुझे नहीं सूट करते। लोगों को कुरान सिखाइए, अल्लाह ताला हमारी वजह से अंधेरे दूर कर दे। फरमाए वसर रूह भी दुआ, इन लोगों ने इसको माले तिजारत समझ कर छुपा लिया, हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे खुदा इससे बाखबर था। आखिरकार उन्होंने थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों के इवज इसे बेच डाला, या फिर रुकिए, कीमती यूसुफ चंद टकों में बिक गया। आपकी भी कई लोग कदर नहीं करेंगे, सब्र कीजिए। अगर आप वाकई कीमती हैं, कल मालिक आपकी कीमत जरूर डलवाएगा और वो इतनी बड़ी कीमत होगी कि तख्त पे बिठा देगा। शर्त एक है कि रदीतु बिल्लाहि रब्ब। पहले भाई तभी ये बताया कि आपने कभी इस पारे को तकदीर के एंगल से कभी आज तक पढ़ा, कभी कुरान खानी में, कभी किसी तिलावत में, तरावी में? नहीं पढ़ते हम, गौर नहीं करते। मैंने इस बारे को जितना खंगाला, मुझे इसमें से तकदीर की बारीकियां नजर आई। क्यों? इसलिए कि आज इसी में कमी है। सारा कुरान पढ़ लेते हैं अल्लाह से नाराज हैं, फिर भी कहते हैं चलो एक बार और पढ़ लेती हूँ, वैसे मैं खुश कोई नहीं हूँ अल्लाह से। नऊज़ुबिल्लाह, सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। यूसुफ ने शिकवा नहीं किया, और यूसुफ कोई गूंगे तो नहीं थे, यहाँ एक और बात नोट कीजिए, और इतना छोटा बच्चा भी नहीं थे। रिवायत में थे 7-8 साल की उम्र थी, बोल सकते थे। वो क्या कहते हैं कि बदल कर भेज फकीरों का तमाशा अहले करम देखते हैं। ईमान वाला देख रहा होता मेरे साथ हो क्या रहा, होने दो, देखना इसके पीछे बड़ी खैर है। हम तो चीख चिंगाड़ के पुलिस को बुला के 114 और 911 पे नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला के, देखो मेरे भाइयों ने क्या किया। ये सब्र और तहमुल चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। कत्ल कर दें आपको लोग, कहने कोई बात नहीं मैं बैठा हूं, मेरा रब बचाने वाला ज्यादा है। हम इंसानों पे नजरें लगाते हैं, इसीलिए खोए रहते, तभी रोते हैं। हमारे सारे दुखों में से मेजॉरिटी जो दुख है वो लोगों पे नजरें लगाने की वजह से, इसीलिए गिले भी उनसे और खुशियां भी उन्हीं के नाम पे। नहीं, यूसुफ चुप करके बैठे हैं, 4 टके मेरी कीमत लगी तो लगे, और क्यों इतना सस्ता बेचा, वो इसकी कीमत के मामले में ज्यादा के उम्मीदवार भी तो ना थे। तो अगर कोई आपकी बेटी की कदर ना करे, कोई आपके अच्छे शरीफ बेटे की कदर ना करे, तो इस वाक्य को याद कीजिए, सब्र से काम कीजिए, आप देखिए आने वाला वक्त कितना कीमती होगा। यहां तक यूसुफ की जिंदगी के दो दौर, पहले बाप की मोहब्बत की गोद, बाप का प्यार, फिर कुएं की गोद। वो पीक थी खुशी की, ये पीक है गम की। और जब अंधेरा पड़ता है ना, तो अल्लाह की तरफ से रोशनी होती है। यहां से अब यूसुफ के जिंदगी का एक और दौर है, तिल कले यामन दावेलु हबैन नास। कनान या मुल्क शाम का छोटा सा गांव था जहां यूसुफ अपने बाप के साथ रहते थे। यूसुफ सारी जिंदगी भी वहां रह जाते तो यूसुफ को वो हिकमतें नहीं आनी थी और वो दुनिया में रहना नहीं आना था जो अल्लाह ने इनको सिखाना था। क्यों? कल इनसे दीन का काम लेना था। अब अल्लाह ने यूसुफ को एक वेस्टर्न कंट्री, आज की जुबान में पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता मुल्क में भेजा जो मिस्र था। यहां आप शाही अदाब सीखेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये सब कुछ हिकमतें हैं। याद रखिए, दीन का काम करने से पहले किताबों से ज्यादा लोगों को पढ़ना पड़ता है। जो लोग किताबें पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ते हैं, किसी से बात हुई उन्होंने कहा 8 साल मदरसे में पढ़ा, 7 साल, 8 साल, 5 साल, कई साल लोग पढ़ते हैं, कई मिसालें देते रहते हैं, कहते हैं जब कुरान तफसीर से आपके साथ पढ़ा तो लगा कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तो उस वक्त भी मैंने यही बात सोची, अब भी कहूंगी कि मदरसों में किताबें पढ़ाई जाती हैं, इंसान नहीं पढ़ाए जाते। जिंदगी में चलना फिरना नहीं पढ़ाया जाता तो हिकमत नहीं आती। कई लोग 5 साल पढ़ते हैं, जुबान नहीं खुलती, कांपने लगते हैं, बात नहीं कर सकते, वजह क्या है कि वो हिकमत नहीं आती, लोगों का प्रेशर नहीं कम होता। यूसुफ को अल्लाह ताला ने एक नबी की गोद से निकालकर अब हालात के बखेरों पे डाल दिया। चलो जाओ अब इसको धक्के दो, कभी देखिएगा मोहब्बतें मिलेंगी, कभी नफरतें मिलेंगी, लेकिन असल में ये यूसुफ की तालीम और तरबियत हो रही है, ये होती है ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल हालात में डाल दो, जाओ बच्चों कमा के लाओ, जो नोट घर ले आओगे बस वही मुझे कबूल है। तो बहुत सिक्योर रखकर भी अपने बच्चों को ना पाले, चोट ना लगे, गिरे ना, गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे, ये ना हो जाए पेट में इंजेक्शन लगा रहे हैं। नहीं, हालात वो कुछ सिखा देते हैं बंदे को जो माँ बाप खुद नहीं सिखा सकते। ये यूसुफ की जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं। आइए पढ़ते हैं अब दूसरा मरहला। مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سر زمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ اللہ حالات بدلتا ہے۔ بظاہر کنویں میں گرایا جانا ایک تکلیف کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصر جیسے ملک میں حضرت یوسف کے قدم جما دیے۔ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ یوسف کو ان راستوں سے گزار کر ایسے راستوں پر لانا چاہتے تھے جہاں وہ انسانیت کے لیے نفع مند ہو جاتے۔ مشکلات کے راستے سے گزار کر یوسف کو خیر کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے، لوگوں کی خیر کا جانا چاہتے تھے۔ اور آپ آج کی زبان میں کہہ لیں کہ ایک اسلامی ماحول سے نکال کر یوسف کو ایک بے دین گھرانے میں بھیجا جا رہا ہے، ایک بہت دیندار ملک سے، ایک اسلامی ملک سے نکال کر ایک غیر مسلم ملک میں بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یوسف سیکھے، ان کی تربیت ہو، اور اب ان کو حکمت آئے، اور ان کو لوگوں سے ڈیل کرنا آئے۔ اور یوسف کے قدم مصر میں جم گئے، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یہ مانگی اللہ سے، بہت کمی ہے اس کی لوگوں میں، معاملہ فہم نہیں ہے، کب کہاں کیا کہنا، کب نہیں کہنا، کب بولنا کب نہیں بولنا، یہ بھی اہم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بولنا مشکل ہے، میں کہتی ہوں غلط ہے، چپ رہنا مشکل ہے۔ بعض دفعہ استاد بولنا سکھاتے ہیں، لیکن اکثر خاموش رہنا سکھائیں۔ اپنے بچوں کو چپ رہنا سکھائیں، خاموشی سے وہ بات سمجھ آ جاتی ہے جو بول کے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے یوسف سے ایک کام لینا ہے، اور وہ اللہ راستے بنا رہا ہے۔ راستے کے جو مرحلے ہوتے ہیں نا، اس کو کبھی منزل نہ سمجھیں، پھر آپ اپنے تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ، ڈیسیژن پاور اور علم عطا کیا۔ مانگے اپنے لیے، قدم قدم پہ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے جب اللہ کے راستوں میں نکلیں گے، کہ اللہ ہم سے صحیح فیصلے کروا، اور علم بھی چاہیے ہوگا۔ اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ کورس کدھر ہوتا ہے بھائی؟ ہارورڈ یونیورسٹی میں۔ کوئی ٹائم مینجمنٹ، کوئی لائف مینجمنٹ سکھاتی ہے امریکہ کی یونیورسٹی، وہاں جا کے سیکھائیں؟ یہ مینجمنٹ ملتی ہے۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسن بن جائیے، اللہ آپ کو یہ ساری حکمتیں سکھائے گا۔ اب یوسف کی آزمائش، پہلی آزمائش آئی سگے بھائیوں کے ہاتھوں، اب آزمائش آ رہی ایک غیر عورت کے ہاتھوں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا، گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ تلک یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اتنی اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ دعا کیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا ایمان دے کہ وہ معاشرے جس میں عورتیں خود گناہ کی دعوت دیں، وہ آگے سے یوسف والا یہ جملہ بولیں کہ ہم تمہاری دعوت پہ لبیک نہیں کہیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ عرش کے سائے میں جو سات لوگ ہیں، اس میں ایک وہ نوجوان جس کو کوئی اعلیٰ اقتدار والی عورت نیک برائی کی دعوت دے تو اس کو قبول نہیں کرے۔ اور یاد رکھیے، فطرتاً عورت پہل نہیں کرتی، اور یہ سب ایک دم نہیں ہوتا۔ اس عورت نے اٹیمپٹ کیا ہوگا، زومانی جملے بولے ہوں گے، یوسف کی طرف تھوڑی سی محبت سے بڑی ہوگی۔ کوئی جانور بھی عورتوں میں فیمیل پہل نہیں کرتی، مرد ہی پہل کرتا ہے اس خواہش کی بھی۔ آپ دیکھیے، مور، طوطا زیادہ خوبصورت، اور مورنی اور طوطی بدصورت ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے مرد میں یہ جذبے زیادہ رکھے کہ وہ اٹریکٹ کراتا ہے، لیکن جب نفس پرستی بڑھتی ہے نا، تو اس معاشرے میں عورتیں گرتی پڑتی ہیں مردوں کے اوپر، وہ مردوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیے، یہ کیا معاشرہ تھا جس میں یوسف تھے، کہ جہاں عورتیں زنا کی دعوت دیں، مرد تو دور کی بات ہے۔ اور یہ بگڑی ہوئی سوسائٹی، آگے اس کی عملی تصویر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتی ہے، وہ اس کی طرف بڑھی، اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ کون سی برہان ہے؟ تقویٰ۔ اپنے مردوں کو، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں اور اپنی بیٹیوں کو بھی آج کے دور میں یہ برہان دیں، تقویٰ دیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خاندان کی بدنامی کا ڈر نہ ہو، ورنہ کوئی پولیس چوکی دارہ نہیں کر سکتا آپ کے میرے بچوں کا، آپ بھی نہیں کر سکتی، جتنی مرضی سی آئی ڈیز لگائیں، جائیں نیٹ کے کنیکشن بند کر دیں، कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों के अंदर ये ईमान डाल दें कि अल्लाह देख रहा है, मैंने उसको नाराज नहीं करना। ऐसा हुआ ताकि हम इससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। दर हकीकत हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे। इसने पीछे से यूसुफ का कमीज खींच कर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। औरत तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मर्द जल्दी आ जाएगा। इसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है इस शख्स की जो तेरी घर वाली पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या इसे सख्त अजाब दिया जाए? यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। इस औरत के अपने कुंबे वालों में से एक शख्स ने करीने की शहादत पेश की कि अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर इसका कमीज पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब शौहर ने देखा तो यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है, तो इसने कहा, ये तुम औरतों की चल्लाकियां हैं, बड़े वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत, तो अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में इस खताकार थी। शौहर को पता चल गया कि कसूर मेरी बीवी का, लेकिन इसके बावजूद कहने लगा चुप कर। अमूमन घरों में ऐसे मामलात को दबा दिया जाता है, नौकरों को दबा दिया जाता है, और इस शख्स ने इस वक्त अपनी बीवी को सजा ना दी, उसका क्या नुकसान हुआ इसको कल देखेंगे। इंशाल्लाह कल इस पे बात करते हैं, क्योंकि इसमें अमल के बहुत से नुकते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे आपके लिए अमल को आसान कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तूब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।